Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojjalangam Parashum Rigavara Vetihastam Prashannam Padmasinam Samantat Stutam Amaragadir Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Saptim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gaura Padam Mahantam Govinda Yogindramatha Sisishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sisyam Tanto Takambartikakara Manyan Asmat Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreyaha Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharane Om Shanti, Shanti, Shanti. Krishna Yajurvediya Svetashvatara Upanishad Antargat Panchme Adhyay Mein सातवें मंत्र की व्याख्या चल रही है। गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः अंगुष्टमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो यपरोऽपि दृष्टः वालाग्रसतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्प्यते नैव स्त्री न पुमान्ने सः न चैवायं न पुंसकः यद्यत् शरीरमादत्ते तेन तेन सरक्षते। श्वेताश्वतर उपनिषद के इस प्रसंग में तुम्पद के वाच्यार्थ का निरूपण हो रहा है। श्रुति जिसको त्वम पद के द्वारा कहती है उसको हम लोग मैं इस पद के द्वारा कहते हैं, उसी को अंग्रेजी वाले आई कहते हैं। अंग्रेजी वाले जिसको आई कहते हैं, हिंदी में उसी को मैं कहते हैं, गुजराती में उसी को हूं कहते हैं, संस्कृत में उसी को त्वम या अहम। गुरु कहेगा त्वम तू, शिष्य कहेगा मैं। गुरु जिसको तू कह रहा है और शिष्य जिसको मैं कह रहा है वो दोनों एक ही चीज है। लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं। गुरु जिसको तू कहते हैं उसका एक अर्थ है वाच्यार्थ और दूसरा है लक्ष्यार्थ। इसी तरह शिष्य जिसको मैं कहता है उसका एक अर्थ है वाच्यार्थ और दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ में गुरु का तू कहना और शिष्य का मैं कहना एक ही है। लक्ष्यार्थ में गुरु का तू कहना और शिष्य का मैं कहना भी एक ही है। कैसा है वो स्वरूप? गुणान्वय। इसलिए हमने संकेत किया था एक स्वरूप होता है दूसरा रूप होता है। रूप अस्थिर होता है बदलता रहता है क्योंकि अन्य के संबंध से होने वाले को रूप कहते हैं, स्वयं में होने वाले को स्वरूप कहते हैं। अपनी निजता का जो पहचान है आइडेंटिटी है उसको स्वरूप कहते हैं। और के माध्यम से होने वाली जो पहचान है आइडेंटिटी है उसको रूप कहते हैं। गुणान्वय गुणों से युक्त होना इसका स्वभाव है। किसका? तुम पद का वाच्यार्थ का, मैं पद का वाच्यार्थ का। गुण से युक्त होना उसका स्वभाव है। स्वभाव अलग चीज है और स्वरूप अलग चीज है। स्वभाव अन्य संबंध से बनने वाला चीज है, वह बनता है उतरता है बदलता है। यह फलकर्म करता, इसकी व्याख्या कल हमने विस्तार से की थी, फिर भी आज संकेत कर रहे हैं। गुण से अन्वित होता है इसीलिए वह कर्ता बन जाता है। कर्ता का प्रयोजन बताया फलकर्म करता, ये जीवात्मा की यही तो विशेषता है। निष्फल कर्म ये नहीं करता, इसीलिए कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता। सृष्टि के आदि से जब ये जीवात्मा का प्रथम अस्तित्व हुआ तब से लेकर आज तक आप और हमको यावत जीवा जीवात्माओं को जो कुछ भी आपत्ति विपत्ति संपत्ति ये सब प्राप्त हुआ है वह यही कर्म करने के ढंग न जानने के कारण ये सब आपत्ति विपत्ति संपत्ति प्राप्त हुआ है। क्योंकि फलकर्म करता तस्मात् कृतकर्म कृतस्य तस्यैव, जिसने जो कर्म किया है वह वो कर्म भोगेगा। महाभारत का उदाहरण है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्ता चीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। उसके द्वारा किए गए शुभ हो चाहे अशुभ कर्म हो वो उस कर्ता के द्वारा ही भोगा जाएगा। और जब तक वो कर्ता उसको नहीं भोगेगा उसके लिए चाहे हजारों करोड़ों जन्म लेना पड़े लेता रहेगा। उसको भोगे बिना वो अच्छा नहीं होता है। सविश्वरूप उसी कर्म के चलते वह अनेक रूप धारण करता है। कर्म के चलते कर्म फलों को भोगने के लिए वह अनेक रूप धारण करता है। एक ही जीव अलग अलग कर्म फल भोगने के लिए अलग अलग उपाधि धारण करता है और अलग अलग उपाधि धारण करना ही उसका विश्वरूप है। इसका भी हमने कल संकेत किया था। जैसे महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, एक जगह एक संत बड़े वेदांत की चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मज्ञान के आत्मज्ञान की बात कर रहे थे और क्योंकि बड़े अच्छी बात करते थे इसलिए उनके अनुयायी थे, शिष्य लोग भी काफी थे। एक समय की बात है कि महात्मा ने कह दिया कि देखो भाई, अब ज्यादा दिन तुम लोगों को वेदांत नहीं सुना पाएंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने वाला है, और ये शरीर मर जाएगा, प्रारब्ध समाप्त होगा तो मर जाएगा, फिर कैसे वेदांत सुनाएंगे भाई। कुछ दिन है भाई तुमको वेदांत सुनाने का, जितना सुना सके, जितना सुन सको सुन लो। शिष्यों ने कहा कि नहीं महाराज, इतनी जल्दी आपका शरीर नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी कृतकृत्य नहीं हुए हैं, हम अभी धन्य नहीं हुए हैं, इसलिए इतनी जल्दी आपका शरीर नष्ट नहीं होना चाहिए। महात्मा ने कहा कि इस शरीर के बारे में किसी के चाहने और न चाहने से नष्ट होने वाला नहीं है, ये तो प्रारब्ध पर आश्रित है। तुम्हारे चाहने से शरीर टिक जाएगा, तुम्हारे न चाहने से शरीर नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेरे चाहने से शरीर टिका रहेगा, मेरे न चाहने से नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो प्रारब्ध अधीन है, प्रारब्ध के चाहने पर टिकेगा और प्रारब्ध के न चाहने पर नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध समाप्ति की शरीर समाप्त, प्रारब्ध का अस्तित्व पर्यंत शरीर का अस्तित्व है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका प्रारब्ध समाप्त होने जा रहा है। शिष्यों में बड़े खेद खिन्नता हुई, दुख हुआ। तब एक शिष्य ने कहा कि महाराज अब हम क्या करेंगे, आप तो मुक्त हो जाओगे, हम क्या करेंगे। महात्मा ने कहा कि तुम जिज्ञासु रहोगे तो कोई न कोई तुम्हें मुक्त करने के लिए निमित्त बनकर आता रहेगा, जैसे मैं आया वैसे कोई दूसरा आएगा। ये हताश होना, निराश होना, ये साधक का लक्षण नहीं है बेटा। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी जो उत्साह है, वो आगे तुम्हारे लिए दूसरे साधन की तैयारी करता है, व्यवस्था कर देता है। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। यूं तो मैंने जितना सुनाया है वही तुम्हारी मुक्ति के लिए पर्याप्त है, यदि तुम ठीक से इसका निधिध्यासन कर लो। रही बात केवल सुने हो तो फिर मैं जैसे हजार गुरु आ जाएं तो भी कुछ नहीं काम बनने वाला है, क्योंकि गुरु सुनाने का काम करता है और आगे उस सुनी हुई द्वारा अपना उपकार करने का काम साधक का है। साधक श्रवण मात्र से उसका उद्धार नहीं होता है, मनन और निधिध्यासन के पश्चात ही उसका फलीभूत होता है, श्रवण फलीभूत होती है। तो जहां तक है कि मैंने तुम्हें जितना सुनाया वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे श्रेय और तुम्हारे मोक्ष के लिए, यदि तुम निधिध्यासन कर सको तो। और सुनना ही है तो भी कोई बात नहीं है, विद्यानंद जी गए, खन्नान जी गए, गणेशानंद जी गए, है ना, गए, आ ही रहे हैं, आत्मानंद आ रहा है, मोहनानंद आ रहे हैं, आएंगे है? वो जाएंगे, वो दूसरा आएगा, दूसरा जाएंगे, तीसरा आएगा, आत्मानंद भी जाएगा तो कोई और आनंद आएगा, आएंगे। तुम जिज्ञासु बनी रहो, बने रहो, श्रोता बने रहो, वक्ता आते रहेंगे। महात्मा ने बड़े प्रेम से समझाया, तुम निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, अपने जिजीविषा को तीव्रता बढ़ाते जाओ। तो शिष्य ने कहा कि आप मुक्त हो जाएंगे। तो महात्मा ने कहा कि ये गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता हूं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। तुम तो कह रहे हो इतनी अच्छी बात, वेदांत की बात करने वाला मुक्त हो जाता है, ये तुम्हारी विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन जहां तक मुक्ति का संबंध है, अच्छे वेदांत की चर्चा कर लेने मात्र से मुक्ति का उसको कोई संबंध नहीं है। लोक में यश और कीर्ति और प्रशंसा आदि प्राप्त हो सकते, भोग प्राप्त हो सकता है, वेदांत की चर्चा कर लेने मात्र से वह मुक्त हो ही जाएगा। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में इसका निषेध कर दिया है, भाग बई खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम विद्युताम ये तद भुक्त न तो मुक्त है। बढ़िया शास्त्र की व्याख्या करके लक्ष्यदार प्रवचन सुनाने कर सारे श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने मात्र से वो मुक्त हो जाएगा ये गारंटी नहीं है। यहां भक्त लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करेंगे कि वो बहुत महात्म बड़े अच्छे वेदांत तो बोलते हैं, वो प्रशंसा कर देंगे। मुक्ति पर उसका तो साधन और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है कि उसका मुक्ति उसकी मुक्ति निश्चित है कि नहीं। मोक्ष उसका उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। तो मैं नहीं कह सकता हूं, बोले हमें कैसे पता चलेगा कि आप मुक्त हुए या नहीं हुए। तो जानना ही चाहते हो तो मेरा प्रारब्ध समाप्त होते शरीर गिर जाएगा, शरीर गिरते ही यदि पुष्प वृष्टि हो गई, देवता लोग स्वागत करने आएंगे, प्रशंसा करेंगे, पुष्प वृष्टि होगी, वातावरण सुहाना होगा, तो समझ लो कि मुक्त हो गया तुम्हारा गुरु। और यदि ये सब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अटक गया, कहीं ना कहीं भटक गया वो। तो बोले हमको कैसे पता चलेगा, बोले यही लक्षण हमने बता दिया। भक्त लोग बड़े श्रद्धालु थे, बड़े विश्वासी थे, प्रतीक्षा करने लगे। सचमुच महात्मा ने जैसे संकेत किया था उसी तरह कुछ दिन के बाद शरीर नष्ट हो गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया। भक्त लोग प्रतीक्षा करने लगे पुष्प वृष्टि होगी, तो हुई नहीं। बड़े दुखी हुए, क्या बात है गुरु मुक्त न हुए, अटक गए भटक गए, कहां अटक गए किधर भटक गए। परंतु गुरुजी ने कहा था कि यदि वो भी जानना चाहते हो तो एक गुरु भाई है, वो अष्टांग योगी है, अष्टांग सिद्ध योगी हो, प्राणायाम करके अष्टांग सिद्ध समाधि द्वारा वो हमको खोजकर बता देगा कि हम कहां फंसे हैं, कहां भटके हैं। एक कहानी इच्छाराम सूर्यकांत भाई देसाई ने चंद्रकांता में ये कहानी लिखी है, हमने वहीं से पढ़ा है ये कहानी। तो शिष्य लोग गए उस योगी के पास, कहा कि हमारे गुरुजी का शरीर छूट गया, हम सोच रहे थे मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त हुए नहीं, क्योंकि मुक्ति का लक्षण बताया था वो लक्षण दिखा नहीं, तो आप बता दीजिए समाधि के द्वारा ध्यान के द्वारा कि हमारे गुरुजी कहां अटके हुए हैं इस समय। तो बोले ठीक है, उन्होंने समाधि साधी, प्राणायाम किया, तो ध्यान से देखा तो जहां जिस आसन में बैठकर वह श्रोताओं को बड़ी वेदांत का प्रवचन किया करते थे, और जिस समय शरीर छूट रहा था उस समय जिस आसन पर बैठे थे ठीक उसके सामने एक बढ़िया बेर का फल पका हुआ देखा, लाल लाल सुर्ख लाल उसके आंख में पड़ गई थी। अब शरीर छूटने के समय में उनके अंदर वो वासना जग गई, आ क्या सुंदर फल है, उसको खाने को मिल जाता तो, इतनी संकल्प करना था कि उनका शरीर छूट गया, छूट ही गया, अब करते क्या, इसीलिए मुक्त नहीं हो पाए थे। तब तो गए उसी बेर के फल के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बनकर बैठ गए और मस्ती से वो बेर का फल खा रहे हैं। उस अष्टांग सिद्ध योगी ने कह दिया कि तुम्हारा गुरु तो बेर के फल में अटक गया है, इसीलिए मुक्त नहीं हो पाया है। शिष्यों के आस्था और विश्वास में आघात लगा, ये हमारे गुरु को नीच दिखाने के लिए ऐसा कह रहा है। उसने कहा कि ऐसा नहीं है बाबा, हमारी ऐसी कोई दुराग्रहता नहीं थी, वासना ही नीच थी तो हम क्या करें, हीन वासना थी तो हम क्या करें, तुम्हें विश्वास नहीं हो जाओ देख लो, लेकिन सावधान से कहीं मर न जाए। देखा तो वास्तव में वह आसन जहां था, शरीर उनका जहां था, ठीक उसके सामने एक बेर के वृक्ष में फल लगा हुआ था लाल लाल। गए उत्सुकता बस, देखा तो एक छोटा सा छिद्र कहां से था, उसके छिलके को धीरे से उतारा तो अंदर मस्ती से बेर खा रहे हैं गुरुजी, छोटा सा कीड़ा, सफेद कीड़ा है, खा रहे मस्ती से। बोले यही है तुम्हारा गुरु, अब इसने फल बेर खा ली, उसकी वासना खत्म हो गई है और कोई वासना नहीं है, इसलिए इसको ले जाकर गंगा जी में विसर्जन कर दो, तो शिष्यों ने लेके जा गए और भागीरथी गंगा में विसर्जन कर दिया। जैसे गंगा का जल स्पर्श हुआ, गुरु मुक्त हुए, आकाश वृष्टि हुई, पुष्प वृष्टि हुई। तो शिष्य कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, शिष्य को फंसा, गुरु को फंसाने वाले भी शिष्य ही हैं और गुरु को मुक्त करने वाले भी शिष्य हो जाते हैं। कहते हैं गुरु चीनी, चेला चीनी हो गया, गुरु गुण ही रह गया। कई बार ऐसा होता है। यहां अभिप्राय यह है कि विश्वरूप, ये उसका विश्वरूप है, उस जीवात्मा का विश्वरूप है। क्या अभी अभी तो महात्मा बनकर बढ़िया वेदांत प्रवचन कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद वह एक कीड़ा बनकर बैर खा रहे हैं। यही तो उस जीवात्मा का विश्वरूप है। न जाने ऐसा रूप कितने होते रहेंगे, अनेक रूपता को ही यहां विश्वरूप का, उसी के चलते त्रिवर्त्मा, उस जीवात्मा के तीन मार्ग हैं, तीन रास्ते हैं। यहां आता है, फिर यहां से जाने का तीन रास्ते हैं, और ये तीन रास्तों में से जिस रास्ते से भी वो जाएगा, आएगा फिर यही। केवल जाने के रास्ते तीन हैं, आने के रास्ते तीन हैं, और आने का स्थान एक ही है। तो ये तीन रास्ते में से दो रास्ते अनुवृत्ति के रास्ते हैं और एक रास्ता अनुवृत्ति का नहीं है। उस तीन रास्तों का संकेत कर दिया है ये त्रिवर्त्मा, यानी तीन मार्ग हैं जीवात्मा के गमन करने का। आजकल इसकी बड़ी चर्चा चल रही है प्रातःकालीन ब्रह्मसूत्र स्वाध्याय में, 8:30 से 9:30 तक की जो स्वाध्याय चलती है ब्रह्मसूत्र, उस प्रसंग में इन मार्गों की बड़ी चर्चा चल रही है। जीवात्मा किस तरह कहां जाता है और किस तरह कैसे फिर आता है, आकर कहां से आता है, कहां से आने वाले का क्या लक्षण है, कहां जाने वाले का क्या लक्षण है, जाने के लिए साधन क्या है, आने के लिए साधन क्या है, इसके बारे में चर्चा चल रही है ब्रह्मसूत्र प्रातःकालीन स्वाध्याय में। देवयान पितृयान और जायस्व म्रियस्व, ये त्रिमार्ग हैं, जायस्व और म्रियस्व यह तीसरा मार्ग है। देवयान उपासक के लिए है, हिरण्यगर्भ उपासक के लिए देवयान है। ये जो जीवात्मा है यहां रहकर, इस शरीर आदि में रहकर, वर्तमान मनुष्य आदि शरीर में रहकर, मनुष्य आदि क्या कहें, केवल मनुष्य शरीर में रहकर जब वह हिरण्यगर्भ की उपासना करता है जीवन पर्यंत, तो उपासना का प्रतिफल ये होता है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद वह जीवात्मा देवयान के मार्ग से, यानी अर्चिरादि मार्ग से, वह सीधा लोक लोकांतर का अतिक्रमण करता हुआ वह ब्रह्मलोक जाता है। इसी को वेदांत ने क्रम मुक्ति कहा। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के आयु पर्यंत अवस्थित रहकर पश्चात परमात्मा द्वारा ब्रह्मा को जो तत्व का उपदेश होगा, उस तत्व के उपदेश श्रवण करने को उसे ब्रह्मलोक में मिल जाएगा। यूं तो ये कहा जाता है मर्त्यलोक के अलावा वेदांत श्रवण और लोक में नहीं मिलता, यूं तो ये कहा जाता है। इसलिए भागवत के प्रसंग में आप लोगों ने कई बार सुना है, जब सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, सुनाना आरंभ करने जा रहे थे, ठीक उसी समय में स्वर्ग से देवता लोग अमृत लेकर आ गए और सुखदेव जी के कहा कि सुखदेव जी इसको क्यों सुना रहे हो परीक्षित को भागवत। बोले ये मृत्यु से डर रहा है, इसको अमृत यानी अमर बनाने के लिए मैं इस भागवत सुनाने जा रहा हूं, और इस संसार में जो मृत्यु से डरता है वो मृत्यु से बचने का एक ही साधन है ये भागवत श्रवण, इसलिए मैं उसको सुनाने जा रहा हूं। बड़े सुखदेव भगवान, उसके लिए तो दूसरा विकल्प है, जब दूसरा विकल्प है तो फिर ये करने की क्या जरूरत है। हम इसके लिए स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, उसको पिला दो, एक बूंद वो पी जाएगा तो तुम्हें सात सात दिन यहां बैठकर उसको कथा सुनाने की जरूरत ही नहीं है, एक सेकंड में काम हो जाएगा। और एक बूंद अमृत से उसका काम हो जाएगा, वो मरेगा ही नहीं है। तो फिर क्या करोगे? बोले ये अमृत इसको पिला दो, और ये भागवत जो सुनाने की तैयारी कर रहे हो इसको लेकर चलो, हम आपको स्वर्ग में ले जाते हैं और वहां जाके हमको भागवत सुना दो। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत सुननी हो तो यही सुनना पड़ेगा, भागवत स्वर्ग में नहीं सुना जा सकता है। और तुम क्या बात करते हो, कहां भागवत का अमृत और कहां स्वर्ग का अमृत, शब्द प्रयोग किया है। जिसके पास बढ़िया से बढ़िया अपार हीरे हों, वह एक क्षुद्र कांच के टुकड़ों के पीछे क्यों जाएगा? तुम जिसको स्वर्ग का अमृत बोलते हो, दिव्य अमृत, जिसके पान करने से शरीर का मरना संभव नहीं, वे तो कांच के टुकड़े के तरह है। लेकिन मैं जिस अमृत को ये परीक्षित को सुनाने जा रहा हूं, वह तो दिव्य हीरे के तरह है, क्योंकि यह अमृत पान करेगा जो तुम लेकर आए हो, वह एक कल्प तक तो नहीं मरेगा, कल्प के अंत में तो उसको भी मरना पड़ेगा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा, ये अमृत पान करने के बाद परीक्षित को भी मरना पड़ेगा। लेकिन जो अमृत में परीक्षित को सुना रहा हूं, वह ऐसा अमर हो जाएगा कि फिर उसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा, तो कल्पांत में मृत्यु क्या कोई प्रसंग ही नहीं है।